और हमने वहाँ पर मथुरा में सवेरे के लेक्चर में राधाष्टमी के दिन हमने प्रभुपाद मैंने भक्ति सिद्धांत सरस्वती का विचार, रूप गोस्वामी का विचार, ये सब हमने दिखाया।
लोकनाथ महाराज एक दिन बता रहे थे कि प्रभुपाद जी कहते थे यहाँ पे कृष्ण बलराम, लेकिन उनको कृष्ण बलराम की ड्यूटी से यहाँ पर लाना चाहते थे।
ड्यूटी यहाँ चाहते थे वो अच्छा होता, वो बहुत अच्छा होता,
मगर उसके बीच में ये पॉइंट नहीं पता कि राधा पाठ करके कहाँ से
ये कहाँ से आए, बतलाओ कैसे आ गया, ये कौन वाले जवाब दें।
अब महाराज हमारे लिए क्या समाधान है?
अब तुम्हारे लिए मैं समाधान क्या कहूँ, तुमको कहूँ जैसे उनको छोड़ करके हमारे पास चले आओ, इनके लिए तो मैंने ये तो भी हमने नहीं कहा, इन्होंने अपने मन से डिसाइड
किया,
जिसका आश्रय लेगा वो बतलाएगा। मुख से एकदम कार्य से भी सब प्रकार से यदि सीधी रूप में चलना है, कृष्ण को पाना है, ब्रज के कृष्ण को और प्रेम पाना है, तो हमारी गुरु परंपरा सबको महाप्रभु से लेकर के अब तक को फॉलो करना पड़ेगा। मैं अब तक जितने आचार हूँ, और केवल अपने गुरु को मानेंगे जिसको गुरु कर लिया वो भी कोई हद तक प्योर डिवोटी नहीं है, अनशन सिद्धांत बतलाएगा और उसे हमारा भजन लक्ष्य हो जाएगा, जो हो रहा है वो भी नहीं होगा। इसलिए उनके बातों को मान करके हम भ्रष्ट होते रहेंगे, इसलिए अब तुम लोग सोच विचार करके तुम्हारी देवता के ऊपर गुरु नहीं कहता जी, और तुमको मंत्र दे दें और तुम, ये नहीं कहेगा, उसको हेल्प सब प्रकार से करेगा, उसको शुद्ध भक्त बनाने की चेष्टा करें, उसके विचारों को देखो, शास्त्र से मिलाओ, मिला करके तो उसको ग्रहण करो, और यदि नहीं ग्रहण करेगा तो कभी जैसा चल रहा है संसार में, जैसे दुनियादारी लोग गणेश को, कृष्ण को, राम को, दुर्गा को एक बराबर वैसा ही होता रहेगा, उससे कुछ अभी धन धान्य हो जाएगा, हो सकता है कि उसके लिए तो तुम लोग घर बार छोड़ करके आए, किस मंदिर में जाएंगे? दिल्ली में तुम्हारा मन मंदिर है, तुम्हारे घर में मंदिर है, वहाँ पर भी दर्शन कराएगी, ऐसे क्या करें, कोई है नहीं, हमारा तो कोई द्वेष नहीं है, हमको नाम से और सिद्धांत से द्वेष है, द्वेष नहीं बल्कि दुख होता है, लोगों का जीवन बर्बाद कर रहे हैं, अपना तो जीवन बर्बाद कर रहे हैं, दूसरों का हमारे विचारों को ग्रहण नहीं कर सके, इसलिए तो वो कहते हैं जैसे हमारा लाइन ही दूसरा है उनका लाइन, अरे हमारा लाइन तो हमारा महाप्रभु से लेकर के अब तक का चलता है, शुद्ध भक्ति, तो इसका मतलब है जो गौड़ीय वैष्णव ही नहीं है, तो जो गौड़ीय वैष्णव नहीं है उनको तत्क्षणात छोड़ देना होगा, एक सेकंड भी हमारा तो ये विचार, यदि कृष्ण का भजन, अब इससे अधिक मैं क्या कर सकता,
यहाँ जो सेवा कर रहे हैं वो भी गलत कर रहे हैं, यहाँ सेवा कर रहे हैं वो भी,
जब तक नहीं जानते थे तब तक कुछ सुकृति हो रही थी, और जानने के बाद में यदि करते हैं तो अपराध हो जाएगा।
अगर विग्रह में सिद्धांत तत्व के साथ गुरु आह्वान करता है और इसकी प्रतिष्ठा करते हैं उसमें, सिद्धांत तत्व के साथ
वो अगुवाई नहीं करता, फिर क्या होगा, क्या होगा, प्रतिष्ठित करने वाला कौन है, कौन उसको प्रतिष्ठित किया, कोई शुद्ध वैष्णव किया ना, कौन किया, उस समय तो विग्रह नहीं था, वो छोटा वाला विग्रह था, वो मूर्खों को समझाए, बड़ा वाला था, क्या जाने हमको तो ऐसा पते नहीं, हमको तो ऐसा कि पीछे से ये मांगा गया बड़ा वाला, ये अभी हाल में अभी 2-3 वर्ष हुआ जो प्रोसेशन लेकर के यहाँ कहाँ से थे,
हैं
उन्हों ने प्रतीक्षा की थी, प्रतीक्षा कहाँ हुई, प्रतीक्षा कौन किया था?
बंगाली मार्केट में हुआ,
प्रतीक्षा कौन किया? तो ठीक हो सकता है
आपके, आपके एक विचार मुझे ठीक लगा जो आपने कहा। उस समय उनका कुछ अपनी तबीयत प्लस इतना सारा काम का बोझ सारे
उन्होंने विचार
दिल्ली
दिमाग नहीं लगाया,
उनका दिमाग विशेष उस समय बॉम्बे अहमदाबाद और
तबीयत भी ठीक नहीं थी।
यहाँ पे उनके शिष्यों ने जैसे जैसे किया उन्होंने उसके ऊपर
अच्छा
रोहित का अच्छा काम कर दिया। लेकिन
हम भी मथुरा में हैं या वहाँ करते हैं, मान लें कि हमको कोई रुचि चीज़ नहीं है और करना चाहते हैं तो भाई तुम आपत्ति इसमें क्या है, ये करो, किंतु उसमें आपत्ति है। ऐसे बहुत कुछ गड़बड़ हुआ है, बहुत कुछ है। एक पत्र लिखवा रहे हैं अब उसमें कुछ ऐसी बातें हैं जो वो नहीं चाहते और जो उनका लिखने वाला है वो उसमें जोड़ दिया, लिख दिया। लोग कहेंगे कि उन्होंने लिखा है, किंतु एक्चुअली उन्होंने लिखा नहीं, ऐसा हो जाता है। जो ऐसे विचार वहाँ पर व्यक्त कर सकता है वो कैसे ये पाठ काफी नाम रख सकता है, ये मेरी समझ में नहीं।
लेकिन कमाल की बात तो ये है महाराज, उन्होंने कहा ये विचार व्यक्त किया, आपको मैंने पुस्तक में पढ़ के सुनाया कि जो राधा रमन और राधा रुक्मणी रमन कुछ समान समझते हैं वो रसा भाग का दोष करते हैं और विद्युत मंडली में ऐसे दोषों को स्वीकार नहीं किया जा सकता, वैष्णव विद्युत विद्युत मंडली में नहीं किया जा सकता, उनका स्पष्ट विचार है। और इधर किन्हीं कारणों से जिनको ना मैं जानता हूँ, शायद आप भी नहीं जानते हो, और जो कह रहे हैं राधा पात्र सारथी ये मंदिर कैसे रख दिया गया, इस विचार वाले व्यक्ति ने कैसे रख दिया ये नहीं मालूम। तो यहाँ दो विरोधी बातें हो गई, तो हमें कौन सा ग्रहण करना चाहिए? तत्व वाला ग्रहण कर लेना चाहिए, दूसरा जो है वो त्याग कर देना चाहिए। इसी तरह से जीव वहाँ से बैकुंठ से कैसे गिरा, इसमें भी उनके दो विरोधी विचार दिखाई देते हैं। एक जगह स्पष्ट लिखते हैं कि कभी भी वहाँ से कभी जीव गिर ही नहीं सकता। जय विजय को जिसने ये माना कि वो उनका पतन हुआ है वो अपराधी है, उन्होंने साफ लिखा। और दूसरी जगह अपने प्रचार के सिलसिले में कई जगह कहा कि जीव जो है वहाँ से आया है, अपने अपनी स्वरूप स्थिति को पुनः प्राप्त करके फिर वापस वहाँ चला जाएगा।
अच्छा, तो हम लोग भी कहते हैं दोष नहीं है,
दोष नहीं है। तो अब इन दो विरोधी विचारों अलग अलग, यहाँ भी दो विरोधी विचार हैं, लेकिन कमाल की बात यह है कि विरोधी विचारों में जो विचार सिद्धांत से अलग हैं उनको तो ग्रहण किए चले जा रहे हैं ये लोग, और सिद्धांत वाले त्याग से चले जा रहे हैं।
तो ऐसे कुछ लोगों का संग नहीं करता, ऐसे भक्ति नहीं है। हमारे राधा पास सारथी की बात तो ठीक है, चलो मान लेते हैं कि प्रभुपाद की तबीयत ठीक नहीं थी उस टाइम, मगर जो प्रभुपाद ने
यदि लिखे हैं तो भी मान्य नहीं है।
हाँ ठीक है मारे, मगर जब राधा नंदनेश्वर मारे वो राधा नंदनेश्वर
के नाम और भी, और भी उससे भी और बदता।
हाँ तो मारे उस टाइम तो प्रभुपाद ने दिया था वो नाम, तो
इसलिए दिया था, कैसे दिया था नहीं दिया था तो कैसे जानते हैं। जो यहाँ पर पुस्तक में एकदम सिद्धांत के रूप में जिसको कह रहे हैं उसका विरोध कैसे करेंगे, इसका सामंजस्य कैसे करेंगे? जो राइटिंग में उन्होंने दिया है और वो जो वर्बल कहा है उसका प्रमाण क्या है? जो चीज राइटिंग में आ गया ना वो प्रमाणित माना जाता है, यहाँ पर राइटिंग में दिया है उसको हम प्रमाण मानेंगे। वो जो कहा है कि इस रूप में किस स्थिति में पागल थे, उस समय में दिमाग गर्म हो गया था अथवा कोई बीमार थे या किसी दूसरे के वजह से दबाव से ऐसा कहा, किसे किया, वहाँ पर 50 भक्त थे। अच्छा ऐसा ये नाम दिया जाए या राधा लंदन ये कैसा रहा, बस ताली बज गई और नाम हो गया, इन्होंने तो अभी कुछ कहा ही नहीं, इन्होंने क्या प्रपोजल रखा था, ये कैसे अब किस रूप में कहा, कैसे कहा?
महाराज ऐसा होता है, मैं बताता हूँ, ये वेस्टर्न लोग हैं, 50 लोग यहाँ बैठे हुए हैं, प्रभुपाद कृष्णा इज ऑनर ऑफ एवरी प्लेस एवरीथिंग, then he must be honor of London also. Yes. Our king must not be honor. Yes. Yes. So king, the Krishna is London national Maharaj? Yes.
Yes. Yes. उनकी बातें ही कोई नहीं समझाना, ऐसे ऐसे ही होता। उन्होंने राइट में जो लिखा है ये
वो एक बात बता रही थी वो लॉस एंजल्स के बारे में, रुक्मिणी द्वारका जी जी लिखा, तो वो जब विग्रह वहाँ पे स्थापित करने वाले थे तो उन्होंने स्वयं राधा श्याम सुंदर स्थापित किया था इसका विग्रह से, तो उस पर जो जीबीसी था वहाँ का जय तीर्थ आपके सामने बता रहे थे, तो वो बोलते हैं कि नहीं इसको रुक्मिणी द्वारकाधीश करेंगे, तो उन्होंने कहा ये तत्व तो नीचे है उससे, इसको क्यों चाहते तुम, तो उसने जबरदस्ती मनवाकर छोड़ा और वहाँ पे जो डीसी था उसका नाम रुक्मिणी द्वारकाधीश कर दिया, नहीं तो वो राधा श्याम सुंदर करना चाहते थे।
इसके विषय में अधिक मत कुछ बोला, हमारी कड़ी कड़ी बातें आ जाएंगी, तुम लोग सिद्धांत
समझो, पता चलने चाहिए ना वो कड़ी बातें, अदरवाइज हम कहते वो करेंगे,
तुम लोग को सिद्धांत समझना चाहिए, कृष्ण किसको कहते हैं ये चीज समझो, नंद नंदन किसको कहते हैं, देवकी नंदन किसको कहते हैं। अब जैसे कोई मैरिज तुम्हारे साथ में किसी लड़की की नहीं है और उसके साथ में अनाथ समाप्त इधर उधर घूमते रहे, पीछे से मान लिया कि तुमको ये गलती महसूस हुई और होने के बाद में फिर तुमने अपने को सुधारा और फिर वैदिक रीति से विवाह करके उसके साथ में रहे, पालने वाला तुम्हारा आदर्श नहीं है, पीछे वाला आदर्श। अब देखो कृष्ण ब्रज में लीलाएं थी, ब्रज में जो लीलाएं की वो उस लीला को क्या कहते हैं, नर लीला कहते हैं, चैतन्य चरितामृत ऑथेंटिक बुक इसको सभी माने, वो भी मानते थे, हमारी गुरु परंपरा में जो जो पुस्तकें हम मानते हैं वो भी उसको मानते हैं, और हमारी गुरु परंपरा का उन्होंने एकदम पूरा स्वीकार किया है, ये बात तो ठीक है ना। अच्छा स्वीकार करके यदि उनकी बातों को वो नहीं मानते हैं, नया कोई चलाते हैं तो हमें मानने नहीं, वो प्रमाणिक नहीं है। तो हम लोगों के रूप महाप्रभु रूप गोस्वामी, जीव गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी से लेकर के कृष्णदास कबीरदास गोस्वामी इत्यादि जितने भी लिखे हैं इसको स्वामी जी भी मानते हैं, तो उसमें लिखते हैं कृष्णेर जतक जते का लीला सर्वोत्तम नरलीला, उनकी जितनी भी लीलाएं हैं कृष्ण की, कहाँ से लेकर परमात्मा से लेकर विष्णु से लेकर गर्भोदशाई क्षीरोदशाई और महाविष्णु बलदेव जी नारायण राम नृसिंह जितनी प्रकार की लीलाएं हैं सब कुछ बलदेव इत्यादि उन समस्त लीलाओं में कृष्ण की जो नर लीला है ये सबसे श्रेष्ठ, और उसमें नर बपू कृष्ण का जो नर बपू है, द्वारका वाला नर बपू नहीं है, वो कभी कभी चतुर्भुज हो जाता है, और कृष्ण का है यहाँ पर नर बपू और नटवर भाव, गोपवेश बेनुकर गोपवेश है, द्वारका में न गुप्तवेश है, गुप्तवेश माने क्या, वो चारण का वेश मोर मुकुल अलहड़ जैसा भाव, स्वच्छंद गति सबसे मिलते हैं, कैसे मिलते हैं, अपने हैं, अपने कौन हैं, सखा हैं, अपने माता पिता हैं, अपने गुरुजन हैं, अपनी प्रिया है, इसमें ऊंचा नीचा का भाव नहीं, एकदम जैसा परस्पर लौकिक संबंध होता है, लौकिक शब्द बंधुवत, लौकिक जैसे बंधु होते हैं, जैसे इनका जो बेटा है और ये जब ये बैठे हुए हैं वो बच्चा स्कूल से आएगा ना उसको गोदी में उठा दे, उठा करके उसे लाड प्यार किया, मैया आई उसको लाड प्यार किया, धूल में लगा हुआ तो अपने अंचल से वो झाड़ दे, नौकरानी करेगी ये या नौकर करेगा ये काम, उसमें भेद है ऊंचे नीचे का, बेटा उसका दास के समान है छोटा है किंतु बड़ा प्यारा है, तो ये कृष्ण के जितने भी सखा हैं यहाँ तक कि दास भी वैसे कृष्ण के बड़े प्यारे हैं, लोगों किसी को भी ये नहीं प्रतीति है कि ये भगवान है, यदि भगवान भी रहे तो भी कोई बात नहीं, नर लीला के अनुसार में व्यवहार कर रहे हैं। गोपियों का कैसा भाव है? भगवत्ता का भाव नहीं। यदि भगवत्ता का भाव और गुरु का भाव होगा कृष्ण के प्रति, तो वो नहीं कहेंगी जैसे हमारे चरण की धूलि कहेंगी, आदेश देंगी, मान कर रही हैं और कृष्ण मना रहे हैं और नहीं मान रही हैं। रुक्मिणी शब्द नाम ऐसा करेंगी? ऐसा नहीं कर। सीता जी ऐसा नहीं। तो ये नर बपू नर मनुष्य भाव संबंधी है, जैसा है लौकिक संबंधु का भाव ये कृष्ण है, द्वारका में ऐसा नहीं है। रुक्मिणी के साथ में उनका व्यवहार ऐसा है। रुक्मिणी जी पतिव्रता है और गोपियां क्या है? पतिव्रता को अपने पैरों के तले दबा करके उसके ऊपर नीचे होने वाली है। अरुंधति इत्यादि सीता जी लक्ष्मी जी उनकी पतिव्रता को इच्छा करते हैं जो वैसे ही हम हैं। लक्ष्मी जी ऐसा नहीं कर सकती। नारायण कहेंगे जरा नंगी होकर क्या हमारे सामने आएंगी? और गोपियां जो कृष्ण कहेंगे वही। कृष्ण कहे गोपियों को यह जाकर तुम दूसरी जगह शादी करो, कोई बात नहीं। कर लिया कि नहीं? लक्ष्मी जी करेंगी, सीता जी करेंगी कहीं? ये कृष्ण ने संपूर्ण रूप से समर्थ। कृष्ण जो चाहते हैं ऋषि को लाख रूप धारण करके राधा जी करते हैं। ये सब ब्रज के भाव हैं। ये कहीं तो ब्रज को छोड़ करके यदि इसको छोड़ करके ब्रज को छोड़ करके और नत्र ये गोपियां जाने कृष्ण जा सकते हैं? ये नहीं जाए। इसलिए इनको और द्वारकाधीश को एक मान लेना, व्यक्ति तो एक ही है, तत्व एक ही है, किंतु जब ही वहां पर जाएंगे त्यों ही अब यादव क्षत्रिय अभिमान हो जाए। उस समय संघ चक्र गदा दे सोने का मुकुट हो जाए, सब पर शासन करने वाले हैं, ब्रह्माचार्य सब उनके सामने आएंगे और हाथ जोड़ सकते। और वहां पर एक छोटा सा कोई आ गया ना जब तो भी गुरुजन मान करके कृष्ण उसके चलते। कोई एक साधारण ब्राह्मण आ गया, यशोदा जी ने कृष्ण को उनके चरणों में दिए। और सब जगहों में ऐसा नहीं है। इसलिए दोनों को एक रस प्रचार से नहीं किया जाता, इसलिए इन सबको समझना। गुरु के पास में जाने से ये दीक्षा नहीं, ये सब ज्ञान देते, इसी को दिव्य ज्ञान कहते हैं। दिव्य ज्ञान और क्या चीज, इसी को देने से भजन परिपक्व होकर के आगे बढ़ेगा। और जब इसका ज्ञान ही नहीं है तो भजन क्या करेगा? कोई किसका भजन करेगा जब ये उसको आइडिया ही नहीं है ये द्वारकाधीश में सिंहदेव में इनमें क्या होता है। हम लोग नहीं करते वहां पर आरती कर रहे हैं राधा कृष्ण का और गा रहे हैं नृसिंह का, तो इसका मतलब है नृसिंह जी की पूजा, राधा कृष्ण से उनका कोई भी संबंध नहीं। वहां पर राधा श्याम सुंदर है ही नहीं है या राधा और कोई है, वो तो नृसिंह जी की पूजा। आरती कर रहे हैं गुरुदेव का वो कर रहे हैं, ये सब तत्व ज्ञान नहीं होने से होता है। तत्व ज्ञान नाम की प्रभुपाद ने शुरू नहीं कराई थी, उन्होंने देखा कुछ नहीं जानते हैं तो कुछ तो करो भाई। इसलिए
नरसिंह आरती गाना सर्व विघ्न निवारक नरसिंह भगवान की।
अरे राधा कृष्ण पूजा जहाँ वहाँ नृसिंह को ले जाएगा तो रसा राम को नहीं रख सकते, द्वारकाधीश को नहीं रख सकते, अन्य सिंह को वहाँ पर रखते हैं।
लेकिन ये जय जय गोस्वामी जी है ना,
क्या है अरे है तो वो कहाँ पर कर रहे हैं? वहाँ पर राधा जी का इत्यादि का कहीं वर्णन कर रहे हैं? दशावतार में है कहीं राधा जी का गोपियों का ये रस का विचार वहाँ है? तो फिर वहाँ पर कर सकते हैं, यहाँ पर दशावतार का वर्णन कर रहे हैं वहाँ पर भी करेंगे। तो वो करें, वो करते रहे, उनका हमको लेना नहीं है। वो हमारा जूठन ले तो उनका कल्याण होगा, उनका जूठन लेने की हमको जरूरत है। हम नृसिंह देव को अपनी वंदनाएं जब करते हैं तो उसमें उनको हम प्रणाम करते हैं, हे कृष्ण आप ही नृसिंह के रूप में हमारी रक्षा करते हैं, हमारी रक्षा करेंगे। किसी से रक्षा करेंगे? किस चीज से? भौतिक दुखों से। आज जिनको भौतिक दुख ही नहीं है उनको क्या जरूरत है? उसके लिए गिरिराज जी रक्षक, गोपियां हैं, ललिता है, विशाखा है, जमुना है, ये हमारी गुरु वो है।
जयदेव गोस्वामी जी की आरती का अर्थ यही है कि कृष्ण ही हमारे रक्षक हैं, वो नरसिंह बन के आए हैं।
वो इस रूप में वहाँ पर उनका विषय दूसरा है। अब जैसे हम नृसिंह जी की स्तुति कर रहे हैं और उस दिन प्रवचन में मैंने नृसिंह जी की खूब महत्ता बताया, प्रहलाद महाराज की सबसे रक्षा है। क्या रक्षा थी बताओ, क्या रक्षा?
जब भी
मैंने जो बाहर से आने वाली विपत्तियां हैं उसको दूर, भक्ति ने क्या किया? भक्ति की जो वृत्ति है, सेवा की वृत्ति, वो क्या दिया? मोमेंटरी उनका अवतार हुआ और असुरों का जो कष्ट साथ दिया जाने वाला असुरों के द्वारा, उसको दूर कर दिया। बस वो भी प्रहलाद महाराज जी नहीं चाहते थे, उनको इसकी परवाह ही नहीं थी। उन्होंने बुलाया, बिना बुलाए क्यों आए? क्यों आए? इसलिए कि उनको बाहरी जो ये सब चीजें हैं उनसे उनको रक्षा की। हमको बाहरी से रक्षा की जरूरत है न भक्ति की, प्रेमा भक्ति की जरूरत है। क्या जरूरत है बतलाओ? प्रेमा भक्ति होगा तो ऑटोमेटिक रक्षा नहीं हो जाएगी? प्रहलाद महाराज जी ने जैसे कुछ इच्छा नहीं की, भक्ति कर रहे थे, भगवान का स्मरण, और उनको कष्ट दे रहा था, तो नृसिंह को बुलाया तो कैसे आ गए? वैसे ही कृष्ण का भजन में हम लोग चलेंगे, प्रेम कृष्ण के प्रति हो, उसके द्वारा वो पालन करें, और जो विपत्ति आएगी हम नहीं चाहेंगे, तो अभी वो जिसने किसी रूप में सिंह करते हैं कभी दूसरे रूप धारण करके हमारी रक्षा करें। रक्षा की हमको जरूरत नहीं है, हमको पहले मूल चीज की जरूरत है। हाँ, जब तक उस स्थिति में हो, यह कहना है कि कृष्ण की भक्ति हमारी अचल हो, इसके विघ्न जितने हैं उसको हमको कृपा करके दिए। किंतु राधा कृष्ण की जहाँ पर उपासना करते हैं उनके भी एक चित्र रख दिया और राधा कृष्ण को एक साथ में बैठ करके उनको आरती करने लगे, ये आपका भक्ति नहीं। तो मैं क्या करूँ? उस पर्दे में नहीं रहे, उस प्रकोष्ठ में ही नहीं रहे, नहीं रह सकते। हमारे मन के प्रकोष्ठ में भी नहीं रहे, वहाँ पर मायापुर क्या प्रमाणिक हो गया इनका बनाया हुआ? अलग है तो ठीक है रखें। हम लोगों के और कहीं भी मंदिरों में, हमारे गुरु परंपरा में ऐसा कहाँ है? कोई एक भी दिखलाए मंदिर नृसिंह जी का अलग है, वहाँ पर महाप्रभु जा रहे हैं, हम लोग भी जाते हैं, दर्शन करते हैं। शंकर जी का भी मूर्ति है, दुर्गा की भी मूर्ति है, हम जाते हैं।
असल में शुरू में तो नहीं रखाई थी महाराज, नृसिंह की कहीं भी नहीं था, बीच में मंदिर वगैरह बने थे तो
एक आदमी जगन्नाथ जी की पूजा करता है, राधा कृष्ण की पूजा करता है, तो कि राधा कृष्ण की पूजा कस्मिन काल में नहीं है, हो नहीं सकती, उसकी धारणा ही नहीं। ये जगन्नाथ जी क्या है? नहीं हो सकता, लाख जन्मों में एक जन्म में, लाख जन्मों में नहीं मिले। इसलिए गुरु इन सब चीजों को सिद्धांत की परिष्कृति करता है, भावों को निर्मल बनाता है, एकांतिक बनाता है। सर्वत्र एकांतिक भक्ति की बात आती है, सर्वत्र जहाँ भी देखो अनन्या भक्ति, अनन्य भक्ति, केवला भक्ति, शुद्धा भक्ति। शुद्धा भक्ति माने प्रेम है, इस रूप में हमको जिसका भजन करना है उसका परिकर लेकर के हमको चलना है। यदि हम कृष्ण का भजन करते हैं वहीं पर ले आए हनुमान जी को, गरुड़ जी को ले आए, होगा उनका क्या जरूरत है? वहाँ पर गोपियों की, विशाखा की, कालिंदी की, जमुना की, गिरिराज जी की, इन सब की रूपमंजरी रूप गोस्वामी, ऐसे परिक्रम की हमको जरूरत है। जहाँ पर जिसका भजन जो करता है उसके परिक्रम, जैसे राम का भजन करेगा जरूर उनको राम लक्ष्मण सीता भरत हनुमान जी को जरूर किया, हम लोग के लीला के जो परिकर हैं उनको लेकर लाख उनके अवतार हैं रहे, सबको हम नमस्कार करते हैं, किंतु हमको राधा कृष्ण लेकर के उनके लिए जो हमको विधि इत्यादि है 64 प्रकार की विधि वो नहीं फॉलो करता रागा निवार, उसमें जो हमारे भजन के अनुरूप सहायक है बस उसी को लेंगे। क्रमश छठते 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 बस एक केवल भाव है, उसमें बृंदा जी कौन है, बृंदा जी कृष्ण से मिलाने वाली एक सखी है, जमुना जी कौन है, राधा कृष्ण की अंतरंग लीलाओं को अपने में खेली कराने वाली है, यही विशाखा जी है, पृथक रूप में गोवर्धन जी कौन है, कौन है गोवर्धन, जो अपनी कंदराओं को अपने हृदय को कंदरा रूप में परिवर्तन करके राधा कृष्ण का मिलन का क्षेत्र बनाया है, ये गिरिराज जी कौन है, ये पुरुष नहीं हो सकते, पुरुष होते तो कृष्ण वहां पर कभी नहीं गोपियों के लिए करेंगे, वो जरूर कुछ स्त्री भाव शक्ति भाव है, इसलिए यह राधा जी का ही ये पुरुष वहां कोई नहीं जा सकता जहां पर कृष्ण की सेवा हो, राधा जी की गोपियां जा रहे हैं कोई नहीं जा सकता, कभी कभी पुरुष वेश में जो मदमंगल जाते हैं उनका भाव एकदम रंगा हुआ है उस भाव का भाव, इसलिए वो लोग प्रिय नर्म सखा कहलाते हैं, कृष्ण के प्रति ऐसे समर्पित हैं जो वो उनका भाव भी स्त्री जैसा हो गया है, इसलिए दूसरा कोई नहीं जाता, इस सबको कहां से समझा, गुरु क्यों देगा दूसरों को, ये अमूल्य निधिया क्यों देगा, जिनको उसके प्रति निष्ठा नहीं उसको नहीं देगा, आप देने से भी वो अनादर करेंगे जैसे इस कोन वाले कर रहे हैं। यदि कृष्ण मान करके करते हैं तो क्या हो, भैया हमारा तुम अभी नहीं ग्रहण कर सकते,
अभी बताया था
महाराज पहले पहले एकदम एकनिष्ठ बनो, सब अधिकारी बनो, जो हम जो कुछ कहेंगे वेद की लकीर हो जाएगी सब, आने तो अभी अभी ये सब मत अभी पूछो, अभी जहाँ निष्ठा है वहाँ से लो, और जब तुम हमारा बन जाएगा अपना तो हम हृदय की जो बात कहेंगे उसको तुम ग्रहण कर सका, इससे पहले नहीं कर, वो हमको बेकार ये चिंतामणि को लूटाना है, जो हमने इतने लाखों जन्मों के बाद में जो गैदर किया ऐसे ही लूटा, ऐसा मत करो, हमारी निशा तुम्हारी निशा कैसे एक हो जाएगी थी? हम गिरिराज जी को किस रूप में लेते हैं, तुम अभी प्रारंभिक दशा में तुम कैसे वो हमारे भाव को ले लो, बतला भी देंगे तो
बतला
तो समझा तो समझ
महाराज जी, फिर हम लोग जैसे धाम के दर्शन में जाते हैं तो द्वारका जिससे धाम है या तिरुपति जाना है सब क्या है सब धाम
पहली स्थिति, जैसे महाप्रभु ने जिसको ऐसा विश्वास हो गया तब फिर तो वो जाएगा नहीं, एकांतिक रूप में वो क्षेत्र संन्यास कर लिया, और जिसको ऐसा नहीं है वो क्या करेगा, पैसा कुछ खर्च होना है,
बद्रीनाथ में जाने में कुछ नुकसान
नहीं
जाना है
ये तो यही तो चार पांच दिन से चल रहा है, सैर करने के लिए जाइए, इसलिए जाइए कि वहीं पर भागवत का प्रकाश हुआ, उद्धव भी वहां पर गए थे, सनंदन सनत कुमार इत्यादि मिले थे, नर नारायण निखिल ने भागवत का वहीं से प्रकाश किया था, इसलिए वो भागवत हमारे हृदय में आए, इसलिए तो जा सकते हैं,
महाराज तो साथ ले जाओ वहाँ जाके भागवत का।
वहाँ पर भगवती गंगा उतरण करके आ रही है, पवित्र देश है, हमारा हृदय भगवती जैसा निर्मल बन जाए वो बना दें, इसलिए जाए।
गंगोत्री भी हम चलने को तैयार
हैं, जाइए, इसमें दोष नहीं है, परंतु भावना दोष नहीं होना।
महाराज आपको 10-15 दिन की ट्रिप बनाते हैं, बद्रीनाथ केदारनाथ और ये सारे,
सोमनाथ जी भी बना रहे थे,
हम तो होके आए अभी, कुछ दिन पहले होके आए, आपके साथ चले गए तो अच्छा लगेगा।
ठीक है, अब हमारे शरीर में वैसी शक्ति नहीं,
आराम करने जाएंगे जिससे 15 दिन बोल रहे हैं ना, नहीं तो 4 दिन में कराते।
आप लोग ब्रिज में आइए 15 दिन, जैसे यहाँ दे रहे हैं 15 दिन हमको वृंदावन में दीजिए, आपको ब्रिज का भाव भाग देंगे, वहाँ पर ब्रज का भाव नहीं आएगा, वहाँ पर तो बस वही बात करेंगे, सब तो की बात नर नारायण ना। वहाँ पर कपिल देव ऋषि की बात कहेंगे, वहाँ पर और सब पुरंजय उपाख्यान है ये सब देंगे, और सब की बात वहाँ पर वृंदावन छोड़ करके कहीं नहीं आएगा।
बताया श्री गुरु वैष्णव की विश्रम सेवा ही गुरु सेवा है, तो विश्रम सेवा का क्या मतलब?
विश्रम न होता है गर्व, श्रम्भ माने होता है मर्यादा, श्रम्भ माने होता है गुरु भाव, बी माने छोड़कर, उनको छोड़कर के जो अत्यंत प्रेम के साथ में हिल मिल कर रहता है उसको भी समझ। अब गुरु जी आए, उनको प्रणाम किया, आरती उतारा, धीरे जब देखेंगे कि हमने अपना सर्वस्व उनके शरण में लिया, अब ये देखेंगे वो क्या चाहते हैं, वो सब भी समझ आए। वहाँ पर डर शंका संदेह ये सब कुछ बड़ा ऊंचा का भाव ये सब दूर हो जाए, उसमें केवल सेवा की भाव नहीं, उसमें जैसे गोपियाँ सेवा करती हैं, यशोदा जी सेवा करती हैं, सखा लोग सेवा करते हैं, इस रूप में सेवा को भी समझ, किंतु अनाधिकार होकर के करने से मरेगा, अधिकार तो नहीं है, और उनके साथ में खाट पर चेयर पर बैठ गया और जो वही है नहीं हूँ, गले में ऐसे लगा करके गलबहियाँ दे करके गुरु जी बाहर खाइए, हम भी चॉकलेट खा रहे हैं, अभी चॉकलेट खाइए, ये सब सेवा के लिए, जैसे महाप्रभु के परिकर हैं और हमारे गुरुवर्गों में सेवक और शिष्य का जो संबंध है, जैसे जीव गोस्वामी है, रूप गोस्वामी के गुरु हैं, कैसे रघुनाथ दास गोस्वामी रूप गोस्वामी के शिष्य हैं, किंतु उनको प्रणाम कर रहे हैं, ये आपको प्रणाम नहीं करते, कहते हैं सबसे पहले वंदना सुषमा जैसे कि आपकी बड़ी प्रशंसा की, आप दूसरों पुरुषों के साथ में अपने पति के सिवा किसी से बातचीत नहीं करते, न कभी मुख देखती हैं, ये ब्रज में प्रसिद्ध है, किंतु ये रंग जो देख रहा हूं ये क्या रंग है, ये है विषम, ये हम लोगों के लिए संभव कर, ये स्वरूप में प्रतिष्ठित होने पर सब गुरु के साथ में यही से प्रारंभ करेंगे, उनकी सेवा के लिए सब कुछ करें, अंतर हृदय पहले उनकी भावनाएं तो जानेंगे, ये क्या सेवा चाहते हैं, गुरु क्या चाह सकते हैं बताओ, तो गुरु क्या चाहते हैं, आजकल के बहुत से गुरु है बदमाश नंबर छठे हुए, लोगों से कहेंगे जैसे देखो तुम सर्वस्व हमको दे दो, महिलाओं से कहेंगे पुरुषों से कहेंगे, ये क्या मतलब, ये संसारिक व्यभिचार ही नहीं उनका दूर हुआ, कृष्ण सेवा में कहां भी आएंगे, गुरु की सेवा मैंने क्या, यदि कोई कृष्ण की सेवा कर सकता है तो गुरु जी अपने आप यही पहचान है, वैसा भजन यदि कोई कर उनकी उद्दीपना कराई इस विषय में, उद्दीपना समझता है क्या, कृष्ण सेवा की उद्दीपन। देखो एक समय मथुरा में मैं था, गुरु जी आए हुए थे, तो वो बैठे हुए थे। उनका स्वभाव था बड़े गंभीर चिंतन, बड़े भारी दार्शनिक। तो ये लेटने के समय ऐसे पैर और पैर रखते थे खाते और ऐसे ही चिंता कहाँ की श्लोक में है और इसको ऐसे 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 कंपाते रहते थे। उन्हें ये गंभीर चिंता था,
चिंतन में होते
ऐसे कर रहे थे। और जी गोस्वामी का वो ले गया कृष्ण संदर्भ गोपाल चंद्र। मुझको बड़ा अच्छा लगा पढ़ते समय। जी गोस्वामी इतने दार्शनिक हैं और इतने रसिक हैं। मैं वही जसोदा जी का कृष्ण का दामोदर लीला का प्रसंग लेकर हुए उनके पास में और उनसे थोड़ी देर के बाद में जब देखा जैसे और हमारी तरफ में देखने में, तो मैंने कहा लोग कहते हैं कि जी गोस्वामी बड़े दार्शनिक थे, बड़े गंभीर थे, किंतु मैं देखता हूँ कि ये बड़े रसिक थे। मैं आज पढ़ रहा था गोपाल चंद्र को, तो उसने देखा और उसका जो वर्णन था, कृष्ण उदुखुल को लेकर के घर से बाहर आए। बाहर आने के बाद में पेड़ों से स्पर्श हुआ, पेड़ गिर गए, पेड़ सीधा जरा ऐसे गिरे, यदि ऐसे गिर जाते तो फिर उसमें बच गया, या पेड़ ऐसे गिरे और यहाँ पर बच गए। नंद बाबा दौड़े आए, कृष्ण खूब जोर से नंद बाबा को देखा और सखा उसके थे जो वही पर चिमटे हुए हैं। कृष्ण भी डर सहमे हुए हैं। यशोदा जी दूर से आकर के बहुत दूर में खड़ी हो गई, देखा जे नंद बाबा वहाँ हैं और गोदी में लेकर के पूछ रहे हैं कि तुमको किसने बांधा, बड़े गंभीर हैं। कृष्ण इधर उधर देख करके बहुत मस्त से कहा जी मैया घीखी बंद रही चल रही लंबे लंबे। उन्होंने कहा किसने बांधा घीखी बनते थे, बस कुछ शब्दों में कहा मैया ने। क्या बड़ा क्रोध हो गया नंद बाबा, क्रोध हो गया। इसके बाद में मुख विवरण हो गया। इसके बाद उन्होंने खोला बड़ी मुश्किल से, और यह खोला किसने तो बाबा हाथ में एक लड्डू कृष्ण को दिया। बड़े गंभीर होकर के दोनों को बालकों को पहले गोदी में फिर अपने कंधों पर बैठा लिया, इस तरफ में बलदेव इस तरफ में और चले गए स्नान करने के। बहुत समय हो गया, मैंने दोपहर हो गया इसलिए बोल, अरे सुनो भाई इधर उधर में मत दो, चुपचाप बैठ करके घूम लो। तो वो लेकर के चले गए, स्नान किया, स्नान कराया बच्चों को, अपने भी स्नान किया। बीच बीच में उनसे उनका मन लगाने के लिए उनसे तरह तरह की वार्तालाप कर रहे हैं,
मैया
का
काम
करें। बस फिर घर में लौटे, तब तक त्रिपहर हो गया, जाकर के वहाँ पर बैठ गए, अपने पॉकेट से या कहीं रखा था मिश्री मंगाया और मिश्री मंगा करके मक्खन कहीं से मिली कृष्ण को बोले अपने नहीं खाए और उनसे बातों में उनको उलझाया रखा। करते करते शाम हो गई, घर में रसोई नहीं बनी। यशोदा जी तो एकदम लकड़ी हो गई हैं, डर के मारे घर में बैठी हुई हैं, वहाँ आ भी नहीं कर पा रहे और किसी की हिम्मत नहीं है ये नंद बाबा से आज पूछता है। बस कृष्ण को लेकर के वहीं पर खेल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। जब शाम हो गई, गोधूली का समय, उपानंद की पत्नी मैंने कृष्ण की क्या लगेगी वो रोहिणी मैया और सब महिलाएं बलदेव को भेजा जे जा उसको पकड़। बलदेव जी जब पकड़े तब बड़े बलवान हैं कि तुम ऐसा झटका दिया आज बलदेव बहुत चिटक करती गिर गए। तो देखा ये आज गंभीर बना हुआ है, बलदेव जी भी चुप हो गए। इसके बाद में वो लोग आकर के प्रश्न बताएंगे बेटा मैया के यहाँ नहीं जाएगा,
नंद बाबा जी के गोदी में चढ़ करके बंदरों जैसा पकड़ लिया नंद बाबा को, नहीं जाए ऊ कर दिया, नहीं जाएगा, खाएगा क्या? तो मिश्री और धारोष्ण दूध, मक्खन नहीं, धारोष्ण दूध। धारोष्ण दूध माने क्या? गायों का जो नंद बाबा वहाँ पर मुख में मिश्री रख देंगे और घर घर जाएगा मुख में, उसी को हम पान कर देंगे। कभी पान किया है सर? हम लोगों ने किया है। जब पिताजी जब गाय या भैंस दोहने लगते तो हम लोग बैठ जाते ग्लास लेकर, अब आप मुख में दे देते। प्रसंग नहीं बदले। अब फिर वहाँ हम खाएंगे, अरे किसके साथ में सोएगा? किसके? तो बाबा के साथ में। आ किसके साथ में खेलेगा? दाऊ भैया, दाऊ भैया के साथ में खेलूंगा। तो जाएगा नहीं? अब तुम्हारी मैया यदि, बस इतना सुनते ही बस कृष्ण जी मैया 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 आँख से आंसू गिरने लगे। नंद बाबा भी रोने लगे, जे वो आए थे सभी रोने लगे, बलदेव भी रोने लगे, सभी रोने लगे। अब बाबा के साथ अब मैया मैया कहने लगे, तो रोहिणी जी ने या उनकी पत्नी ने
मंत्र न भी दे, किंतु जिसको वो करे उसको सभी को मंत्र समझ करके उसको अपने जीवन में प्रतिष्ठित कर दे, यही गुरु। उनके भावों को, उनके विचारों को हमने आत्मसात कर दिया, यही गुरु।
महाप्रभु जी का हमारे जितने गोस्वामी महाप्रभु के कोई शिष्य नहीं, उस तरह से नहीं, किंतु शिष्य से कोटि गुण है। भक्ति विनोद ठाकुर जगन्नाथ जी का दास बाबा जी महाराज का यही रिलेशन, हमारी गुरु परंपरा इसी को कहते हैं भागवत परंपरा। हाँ परिष्कृत करो, परिष्कार करो जी, भगवान तुम्हारे ऊपर में कृपा तुम लोगों के ऊपर।
आपने एक बार जो व्याख्या दी थी भागवत परंपरा और शिष्य परंपरा की, और बड़ा ही उसका सूक्ष्म विवेचन किया था, एक कक्षा दी थी आपने, उसमें एक शब्द ये आया था कि भागवत परंपरा में शिष्य परंपरा अंतर निहित है। तो एक बार मेरे दिमाग में ये विचार आया, दीक्षा जिसने दी गुरु ने, उसने एक मंत्र दिया कान में सुना दिया, लेकिन जो गुरु शिक्षा गुरु के रूप में भागवत गुरु उस दीक्षा मंत्र को हृदय में बैठाता है, वो तो पता नहीं कितनी बार उस मंत्र का उच्चारण करता है, और दीक्षा गुरु ने जो एक बार जीवन में कार्य किया वो तो लाखों बार उसको जीवन में करता है।
वो क्या
इसलिए
है?
ये भागवत परंपरा में दीक्षा गुरु अंतर नहीं है,
ये तो हमारे गुरु जी का लिखा हुआ प्रभुपाद जी ने किसी का प्रवर्तन किया, लोगों को समझ में नहीं आता। भागवत परंपरा नहीं लेते हैं, क्या ले रहे हैं? शिष्य परंपरा। इसको मर रहा है, इसी चीज को तो नहीं समझ रहा, इसी चीज को समझ जाते बस काम हो जाता, और समझ में आएगा भी नहीं।
एक गुरु ने एक बार मंत्र दिया, मैं उसको दीक्षा गुरु करके सम्मान करता हूँ, जिसने 100 बार उसी मंत्र को सुना के स्थापित किया, उससे तो ऑटोमेटिकली 100 गुना ज्यादा सम्मान देके मैं अपने प्राण उससे निछावर।
इसलिए दोनों को एक प्रकार कृष्ण का स्वरूप, एक कृष्ण का रूप, कृष्ण का प्रकाश है, कृष्ण के रूप है गुरु, दीक्षा गुरु कृष्ण के रूप है, शिक्षा गुरु स्वरूप है, स्वरूप माने अपना रूप, कितना बड़ा है। रूप गोस्वामी को हम लोग शिक्षा गुरु देते हैं, अपने गुरु से कम समझते हैं न अधिक समझते हैं न क्या समझते हैं, बतलाइए।
एक बार आप एक शब्द कह रहे थे, लेकिन उसकी व्याख्या करते समय किसी कारण से रुकावट हो गई, कि हम जानते हैं कि रूप गोस्वामी बहुत अच्छे हैं और हम उनके ऋणी हैं, लेकिन मैं अपने गुरु का अधिक ऋणी हूँ, और उस समय आप बताने जा रहे थे अपने गुरु और रूप गोस्वामी जी आ जाए उस समय, उनके संग जो हमारा शिष्य का तारतम्य या सामंजस्य वो कैसे करेगा, लेकिन ये व्याख्या आप पूरी नहीं दे सके, बस इतना ही आपने एक सेंटेंस कहा था, यद्यपि रूप गोस्वामी मैं जानता हूँ कि उनकी स्थिति बहुत ऊंची है, लेकिन मैं अपने गुरु का अधिक आभारी हूँ। ये शब्द है कि आपने
अपने अधिकार पर अधिकार संसाधन मान लेके जैसे हम अपने हमारे गुरु हैं वही तो बतलाएंगे ना। ये रूप गोस्वामी क्या है, रूप गोस्वामी के कितने हमारे गुरु प्यारे हैं, हमारे गुरु के कितने प्यारे वो रूप गोस्वामी हैं। यदि रूप गोस्वामी आ जाएंगे तो हमको उल्लास होगा कि नहीं, कितना कितना उल्लास होगा। गुरु जी के साथ में जो था तो वह ही है जैसा भी है, किंतु उनके आने से उल्लास कितना बढ़ जाएगा। बस गुरु जी के तरफ में ऐसे देखते हुए उनसे लिपट जाएंगे। किंतु साधारण लोगों के लिए यह सब चीज़ है, उनसे आदर से जो गुरु जी रूप गोस्वामी आए हैं मैं उनको प्रणाम करूं कि नहीं। ये वैष्णव आए हैं इनको मैं प्रणाम करूं, गुरु जी कहेंगे विचार है विचार कर ये हमारा अनुकूल है कि नहीं, हमारे लिए ये कुछ करता है कि नहीं, ये विचार करके कहेंगे और देखेंगे ये हमारी श्रद्धा उसमें चली जाएगी भाई।
मेरे बजे से मैं घर तो नहीं जाएगी।
हाँ तो फिर अभी मत कर, जो हम कहते हैं वैसा ही मन ही मन में आदर करो, उनके पास में मत जाओ। अब गुरु जी को ये देख करके प्रसन्नता होगी कि नहीं, ये रूप गोस्वामी को देख करके हर्षित उल्लसित होकर के उनसे आज मेरा जीवन सार्थक हो गया, हमारा यह प्रिय शिष्य उनको ऐसे उनको आदर करता है।